नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया है। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। और आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।